पंचदशी के कुटस्थ दीप प्रकरण का 48वां श्लोक। देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभास भ्रमशया अधिष्ठान चिति सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता। देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभास भ्रमशया अधिष्ठान चिति सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता। अब यहां बता रहे कि कूटस्थ क्या है और ब्रह्म क्या है, ये परिभाषा यहां पर बता रहे हैं कूटस्थ की और ब्रह्म की। ऊपर से ऐसा समझिए दृष्टांत में, जैसे मान लीजिए ये जहां बैठे हैं ये मंडप है, मंडप बोलते इसको, या मठ ले लो कि जो मठा कासे मठ है ना, जहां बैठे प्रेमपुरी सत्संग भवन में, तो मठा कासे उपलक्षित आकाश तो कुटस्थ हो गया। और जो हमारा भारत है ना, भारत जिसको बोलते भारतीय अंतरिक्ष, तो भारतीय आकाश से उपलक्षित का नाम हो गया आपका ब्रह्मा, ऐसा समझो। अब ये जो मठाकाश है, इस मठ उपाधि में एक पतली सी दीवाल है, इसमें कुर्सियां लगी हैं, लाइट है, स्पीकर है, लोग बैठे हैं। ऐसे यहां पर शरीर उपाधि हो गई, इंद्रियां हो गई, मन हो गया, पंच प्राण हो गए, बुद्धियादि। इस परिधि में जो चैतन्य का प्रतिफलन है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब या जो छाया है, इसका नाम हो गया कूटस्थ। यह जो कूटस्थ है यह असंग है। जैसे कि आप घटाकाश के बिना घट में कुछ भी रख नहीं पाएंगे, आकाश बोलती स्पेस को जो खाली पना है, परंतु जो स्पेस खाली पना आकाश है वह किसी भी द्रव्य के गुण से दोष से प्रभावित नहीं होता। वह मिट्टी के तेल के पेट्रोल के बदबू से स्मेल से उसमें बदबू पना नहीं आएगा, और घृत के खुशबू पना से उसमें खुशबू पना नहीं आएगा आकाश में। सब आकाश में ही है, आकाश न हो तो न उसमें घी आएगा, न पेट्रोल आएगा, न मिट्टी आएगी, न गोबर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। परंतु उनके गुणों से घट तो प्रभावित होता है, घी के चिकनाई से गले में चिकनाहट आ जाएगी, है ना, और मिट्टी के तेल के रुक्षपना से रुक्षपना आ जाएगा, घड़े में आएगा, और मिट्टी के मालिन से घड़े में मालिन्य आ जाएगा। परंतु जो उसमें आकाश है ना, घटाकाश, वह मिट्टी के मालिन्य से मलिनता नहीं आती, घृत के चिकनाहट से उसमें चिकनापना नहीं आता, और जल के शीतलता से उसमें उसकी ठंडाई नहीं आती। तो बिना आकाश के उसमें कुछ भी संभव नहीं है, न जल आ सकता है, न घी आ सकता है, न पेट्रोल आ सकता, कुछ भी नहीं। परंतु वह उन गुण दोषों से असंग है, जो घटाकाश है ना, घट तो संग करता है, उसमें खुशबू पनाएगा, बदबू पनाएगा, शीतलता आएगी, चिकनाई भी आएगी घड़ा में, परंतु घटाकाश में कुछ भी नहीं आता है, ऐसे कूटस्थ है। शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो उपाधि है, इन उपाधियों से जो उपलक्षित चेतन, जैसे कि बिना आकाश के कोई चीज भी बिल्कुल आ नहीं सकती, न घी आ सकता, न मिट्टी का तेल, न जल, न दूध, कुछ नहीं आ सकता है। ऐसे ही बिना चेतन के, घटाओ इसको दृष्टांत में, बिना चेतन के किसी की सत्ता नहीं। कुटस्थ रूपी चैतन्य के बिना शरीर इंद्रिया मन बुद्धि की बिल्कुल सत्ता नहीं। तो शरीर इंद्रियादि से उपलक्षित चेतन को कुटस्थ कहते हैं, वही बात यहां बता रहे हैं। अच्छा, भारत देश बड़ा हो गया, भारत में तो कई राज्य हो गए, स्टेट हो गए, कई शहर हो गए, नदियां हो गई, पर्वत तालाब हो गया, तो ऐसे भारतीय अंतरिक्ष है ना, उधर पाकिस्तानी अंतरिक्ष है, उधर अमेरिकन अंतरिक्ष है, तो भारतीय आकाश जो भारतीय सीमा हो गई, उस भारतीय सीमा से उपलक्षित जो आकाश है वह समझो ब्रह्म है। उपाधि जब तक जुड़ी है तब तक ईश्वर संज्ञा, उपाधि हटा दिया तो ब्रह्म हो गया। क्योंकि चाहे अमेरिकन आकाश हो, चाहे पाकिस्तानी आकाश हो, चाहे चैनल आकाश हो, चाहे भारतीय, सब आकाश आकाश एक है। वो तो हमने एक सीमा कर दिया, इस सीमा का नाम भारतीय अंतरिक्ष, तो जो बड़ी उपाधि होने से उसको हमने कह दिया ईश्वर, उपाधि हटा दिया उसी का नाम हो गया ब्रह्म। वही बात यह समझा रहे आपको कि देह इंद्रियादि युक्तस्य एक हो गया, दूसरा जीवाभास जो ब्रह्म हो रहा, जीवाभास चिदाभास लीजिए, चिदाभास का जो ब्रह्म है उसी अधिष्ठान चेतन का नाम कुटस्थ है। जैसे कि बिना आकाश के आप घड़े में कुछ भी रख नहीं पाएंगे, आकाश न हो ना तो घड़े में ना जो है ना मिट्टी आएगी, ना घीत आएगा, ना पानी आएगा, ना जो है ना दुग्ध है, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसी जो अधिष्ठान चेतन है, शरीर इंद्रिय चिदाभास का जो आश्रय है, उसी अधिष्ठान चेतन को कुटस्थ बोलते हैं। सब नहीं, देहेन्द्रियादि का, जैसे वेदांत परिभाषा में आपने श्रवण किया कि घटावच्छिन्न चेतन, श्रवण किया ना, पटावच्छिन्न चैतन्य, दंडावच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य तो कणकण में व्यापक है। मतलब कि जो चैतन्य है वह कणकण में अनुस्यूत है, फिर भी घट उपाधि से नाम हो गया घटावच्छिन्न, पट से पटावच्छिन्न, दंड से दंडावच्छिन्न। सामान्य चैतन्य तो सर्वत्र है, मतलब घट के बाहर भी घट के भीतर भी, जैसे सामान्य आकाश घड़े के बाहर भी है ना, घड़े के बाहर भी है, पर जो घड़ा के अंदर है ना उसको घटाकाश कहते हैं, ऐसा समझो आप, जो घड़े के अंदर है ना उसको घटाकाश कहेंगे, मठ के अंदर को मठाकाश कहेंगे, दंड के अंदर को दंडाकाश, वो डंडा होता है ना बांस का, उसके अंदर लंबा लंबा जो आकाश है उसको दंडाकाश बोलेंगे। परंतु सामान्य आकाश वो डंडे के बाहर भी है भीतर भी है, पर भीतर वाले का एक विशेष नाम हो गया, जो बाहर है ना उसको सामान्य आकाश बोलते हैं, और भीतर वाले का विशेष नाम हो गया घटाकाश, पटाका, दंडाकाश। ऐसे ही सामान्य चेतन है वह तो कणकण में, जिसको शुद्ध चेतन बोलते हैं, जिसको ब्रह्म बोलते, परंतु तत्तद उपाधियों के आने के बाद उसका नाम हो गया कुटस्थ, घटावचिन पटावचिन के समान उसका नाम कुटस्थ। तो कुटस्थ उसे कहेंगे जो शरीर इंद्रिय देहादि उपाधि से उपलक्षित हो ना, उसका नाम है कुटस्थ। तो जो घड़े के अंदर आकाश है ना, वह आकाश भी महाकाश से अलग नहीं है, हाँ वह कुटस्थ, मतलब उस परिधि से जो उपलक्षित हो रहा है, जैसे घट परिधि से सीमा से उपलक्षित होने वाले आकाश का नाम हो गया घटाकाश। फिर दृष्टांत बैठे, दृष्टांत अपने आप आ जाएगा, जैसे आकाश तो बाहर भीतर एक है, अंतर नहीं है, घड़े के अंदर भी वही आकाश, घड़े के बाहर भी वही आकाश, आकाश दो नहीं है, परंतु घट परिधि एक सीमा के कारण से उसका नाम घटाकाश हो गया। ऐसी शरीर इंद्रियादि के अंदर जो चेतन का प्रतिबिंब है ना, प्रतिफलन है, उसको बोलते कुटस्थ, आधार हुआ उसी को बोलते हैं अधिष्ठान चिति, अधिष्ठान चेतन। सहसा कुट उसी का नाम कुटस्थ है। तो जब तक शरीर आदि उपाधि है ना, तभी तक समझो कि वह कुटस्थ संज्ञा है। ये भी ध्यान रखना, दोनों मंत्र क्या है, शरीर आदि इंद्रियों से जो युक्त है ना, उसको बोलेंगे चिदाभास, उसको बोलेंगे जीव। हाँ, युक्त मतलब बंधा हुआ, जुड़ा हुआ, और जो उससे अलिप्त है, असंग है, उसका नाम हो गया कूटस्थ, उसको बोलेंगे कूटस्थ, असंग है, असंग, जैसे घटाकाश में आकाश, ऐसे असंग है। तो ऐसा समझाना पड़ेगा और दृष्टांत बदलना पड़ेगा, घड़ा है, घड़े के अंदर जल है और जलाकाश, ऐसा बोलना पड़ता है उसको, समझे ना, तब घटेगा। देखिए घट है और घट के अंदर जल है ना, और जलाकाश, तो जलाकाश असंग है पर जल असंग नहीं, भाई बिना आकाश के जल तो आएगा नहीं, परंतु घट के अंदर जल है ना, तो जल का जो ठंडाई ये शीतलता है, उस शीतलता से घट में शीतलता आ रही है, घृत के चिकनाई से चिकना पर अपना आ रहा है, वो तो हो गया जीव, चिदाभास हो गया, जो उससे संग कर रहा है ठंडाई से शीतलता से चिकनाहट से, वो चिदाभास जीव कहलाएगा। सुख से दुख, सुख में सुखी पना, दुख से दुखी पना का अनुभव करा, वो जीव है, चिदाभास है। और जो जलाकाशन अंदर बिल्कुल असंग है, घड़ा, घड़े के अंदर घटाकाश, उस घटा के अंदर एक जलाकाश है, जल आ गया ना, और जल के अंदर जो आकाश, तो जलाकाश असंग है, असंग है, ऐसा घटाना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे कुटस्थ आपका है। शरीर जीव तो संग करता है, चिदाभास जरा संग करता तो आम सुखी आम दुखी अनुभव होता है, परंतु जो कुटस्थ है वो असंग है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो आपको अपने को जीव भाव से ऊपर उठाकर कुटस्थ में परिवर्तित करना है, वहां पर स्थिर करना है आपको, वहां पर टिकाना है आपको, उसको छुड़ाना है ना धीरे धीरे। वो दुनिया तो छुड़ाती है, सच कह रहा हूं, हाँ सूक्ष्म दुनिया डंडा मार मार के आपको छुड़ाती है, नाती पोता परपोता मित्र पत्नी पति, वो कहते हैं कि तुम अपने आप को जानो, पर आप जबरन संग करते। उपनिषद ये मंत्र है ना, आत्मानम अन्यम प्रियम मन से प्रियम ते रोचति, ये बिल्कुल अनुभव गम्य है, इसको उतारना चाहिए जीवन में। आत्मा से भिन्न किसी दूसरे को प्रिय मानेंगे, प्रियता करेंगे, चाहे पुत्र में, मित्र में, पत्नी में, पति में, किसी वस्तु में, तो आत्मा से अन्य किसी को प्रिय मानेंगे ना, प्रियता बुद्धि, तो प्रिय तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि प्रिय तो है ही नहीं, उसका असली चेहरा है जड़त्व, परिच्छिन्नत्व, दुखत्व, अनात्मा तो चेहरा है। जैसे कि कांटे के ऊपर आटे का लेप होता है ना, ऐसे ऊपर से प्रियता का आरोप है, अंदर तो कांटा है, दुखत्व जड़ता है। तो आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद प्रिय है, उससे भिन्न किसी को प्रिय मानेंगे तो प्रिय रुलाएगा, व्यवहार में होता है ना, जिसको प्रिय मानते वही एक दिन आपको रुलाता है, रुलाता ही है व्यवहार में, इसलिए सावधान कर दिया पहले ही। अंतरात्मा, बस इतना अंतर है कि अंतरात्मा आपका हिंदी में कहते हैं, कुटस संस्कृत में, अंतर इतना ही है, भाषा का अंतर है, भाषा का अलग है और कोई फर्क नहीं। जैसे आम बोलो मैंगो बोलो बात हो ये समझो कि नहीं, वो अंतरात्मा है, बाहर नहीं, बाहर वाले को शुद्ध चेतन बोलेंगे, शरीर के बाहर उसको शुद्ध चेतन, वो अंदर शरीर के उसको कुटस्थ बोलेंगे। पूर्वात्मा अंतरात्मा होना चाहिए, जीव नहीं, जीव अलग है, अलग है। देखिए जीव शब्द जो है ना, जीवी धातु है प्राण धारणे, इससे जीव बनता है, जीवी प्राण धारणे ये धातु है व्याकरण का, तो जीवी प्राण धारणे से जीव बनता है। तो जब तक प्राण की सत्ता है ना, मुखनाशक निर्गमन करा तब तक जीव बोलते हैं, पर अंतरात्मा का प्राण से संबंध उसका तो सबसे संबंध है। जैसे कि देखो भारत का संबंध इस प्रेमपुरी से भी, मुंबई से भी, भारत तो व्यापक है ना, पर मुंबई तो एक सीमित देश को मुंबई बोलेंगे, मुंबई से बड़ा हो गया महाराष्ट्र, उससे बड़ा भारत, ऐसी यहां पर कैटेगरी थोड़ा थोड़ा है। तो कुटस्थ की व्यापकता है, जीव की परिच्छिन्नता है, जीव हमेशा आपको उपाधि से आसक्ति कर लेता है कि हम करोमि, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये अहंकार कर लेता है। तो जीव भाव होने से हमें सुखी दुखी होना पड़ता, तो जीव भाव से ऊपर आपको वही है, जीव को चिदाभास एक ही चीज है, हाँ अंतर नहीं, एक ही है। तो देखो आगे, हाँ बहुत बड़ा फर्क है। देखिए सूत्रात्मा ये शब्दों को ना रखना चाहिए याद करके, पारिभाषिक शब्द है सब, ये सब पारिभाषिक शब्द जितने आप बोल रहे हैं ना, ये जो सूत्रात्मा और हिरणगर्भ ये जो दो शब्द है पारिभाषिक है, स्थूल शरीर और जो आपका सूक्ष्म शरीर है ना और कारण शरीर, इन तीनों के समष्टि व्यष्टि संतर पड़ता है। स्थूल शरीर की अभिमानी समझ लीजिए, स्थूल शरीर की समष्टि अभिमानी देवता को विराट कहते हैं, यहां से ले चलिए विराट बोलते हैं। पूरे ब्रह्मांड के स्थूल शरीर के अभिमानी चेतन को देवता का नाम है विराट, उसी को वैश्वानर बोलते हैं, दो शब्द से बोलते हैं। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि हमारे शरीर में हजारों कृमियां हैं, श्वेत और रक्त, आपस में सबका संग्राम चलता है, पर उन सबका एक आदमी अभिमान करता है, मैं बोलता है ना, मैं हूं राम श्याम करता है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड की इतनी स्थूल शरीरधारी हम आप इतने हैं, पशु पक्षी सब, तो समस्त स्थूल शरीराभिमानी देवता का नाम है विराट। अब स्थूल करना सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में क्या है, दो तत्व है ज्ञान और प्राण। सूक्ष्म में क्या दो है, एक है पंच प्राण और पंच ज्ञानेन्द्रियां। तो समष्ट जितने भी ना समष्ट लिए, समस्त मतलब समष्टि, प्राण के अभिमानी देवता का नाम सूत्रात्मा है, और समष्टि ज्ञान शक्ति के अभिमानी देवता को हिरणगर्भ बोलते हैं, जो ज्ञान तत्व इसको महतत्व बोलते हैं, अभिमानी देवता का नाम है आपका हिरणगर्भ। अब रह गया अविद्या शरीर, तो समस्त अविद्या शरीर के अभिमानी देवता को ईश्वर कहते हैं, सब शब्द परिभाषिक है, और सबसे आपका उपलक्षित होता है ब्रह्मा जो निरुपाधिक है, उसके बिना कुछ भी नहीं। ये तो शब्द सब पारिभाषिक है, चले चलो आदि शब्दे न मन आदियों गृहयंते, मन आदि लेना, देखो वेदांत में कितना विचार किया है, अभी वैज्ञानिक वहां तक बेचारे पहुंचे नहीं है, शायद पहुंच सकते हैं पर पहुंचे नहीं है, पहुंचने की संभावना है आश्चर्य मतलब नहीं है, पहुंच सकते, पर जितना दिमाग लगाते ना विज्ञान में उसका एक अंश भी लगाए ना सवा अंश भी लगाए तो तुरंत पहुंच जाएंगे, मतलब बुद्धिमान तो है नहीं, बुद्धि तीव्र है, तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक के बुद्धिमान देय विषया शक्ति दुराग्रह, तो उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, मंद नहीं है, पर दुराग्रह विषया शक्ति दो दोष है। दुराग्रह मतलब यही सत्य है, संसार को सत्य मांग चल रहे, और विषया शक्ति विषय के भोग में आसक्त, ये तीन दोष बड़ा भयंकर है तत्व ज्ञान की प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में। एक तो बुद्धिमान्द्य, दूसरा विषया शक्ति, तीसरा दुराग्रह, तीन नहीं होना चाहिए। तो सज्जन जो है ना बिल्कुल सरल होता, दुराग्रह नहीं होता, ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, खिचड़ी बना लो या रोटी बना लो, कुछ तो खाना ही है। बोलो रोटी खाना है तो तकरार होगा ना पूरी खाने वाला के साथ, चलो चाय की जगह दो ही पूरी खा लेने का, अपने को कम खाने काम चला लेने का, पकड़ेंगे दुराग्रह, नहीं जी हमको तो बस खिचड़ी सादी रोटी खानी है, और जवान बच्चे उनको तो मालपुआ पूरी चाहिए, खीर चाहिए, हलवा चाहिए, तो नहीं बैठेगी बात ना, तो अशांति फैलेगी, तो थोड़ा कम खाने का काम चल जाएगा। तो दुराग्रह रहित होना व्यवहार ही फायदा, ऐसा नहीं कि अध्यात्म में व्यवहार में भी दुराग्रह न हो तो व्यवहार में सच्चिदानंद का अनुभव होगा, मतलब शांति आनंद का अनुभव होगा, और व्यवहार में दुराग्रह है तो अशांति फैलेगी। तो भाई मैं स्वयं बनाऊंगा, तुम नहीं बनाते हो तो होता कि नहीं, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं स्वयं बनाता हूं, चलो तुम नहीं बनाते हो तो व्यवहार में हो जाता ना ऐसा, तो दुराग्रह नहीं करने का। और विषयाशक्ति, किसी विषय में आसक्ति होती ना, किसी के रूप में, किसी रस में, किसी गंध में, किसी को समाचार भी होती है, अरे समाचार वो सुनते हैं क्या वही चीज है, वही नाम रूपात्मा, पर एक आसक्ति है कि यार सुन लेना चाहिए, सुनना कोई बुरा नहीं, पर हमारी जो वृत्ति ना ब्रह्माकार वृत्ति, उसका विजातीय मतलब विरोधी वृत्ति हो जाती है, प्रतिबंधक है। जो आपकी ब्रह्माकार वृत्ति चल रही है भजन ध्यान चिंतन का, उस वृत्ति की विरोधी वृत्ति आ गई जो दुनियादारी की वृत्ति, इसीलिए कहते साहब छोड़ो, पुराने महात्मा की कहावत है, पुराने महात्माओं की भी कहावत है, आधुनिकता से बिल्कुल दूर। इसका मतलब कि जो पुराने लोग किंवदंतियां प्रमाणिक है, उनकी जो किंवदंती है कहावतें हैं वो बिल्कुल शास्त्रीय है, अनुभव गम्य है। तो विरोधी वृत्ति को हटाने के लिए सब निषेध किया कि भाई तुम्हें आनंद चाहिए, शांति प्राप्त करना, परमात्मा को पाना है, तो फिर इस संसार के चीजों से दूर हटो, क्योंकि तो ज्यादा समाचार देखेंगे सुनेंगे, व्यवहार की चीजें हैं ये सब, तो उससे क्या होगा कि आपके वृत्ति में जरा कुछ रुकावट आएगी, वृत्ति बदल जाएगी। होता क्या है ना कि आप ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तो 20 मिनट का समाचार नाचने लग जाता है, समझे कि नहीं। आप जो 20 घंटे भगवान की भक्ति चिंतन किए ना, उसकी अपेक्षा वो 5 मिनट का जो चीज है ना, वो आता है 20 मिनट में आता रहता है, और नहीं सुना तो आएगा नहीं सीधी बात, इसलिए निषेध किया है। तो आदि शब्दे न मन आदयो गृहन्ते, देखिए श्लोक में लिखा ना देहेन्द्रियादि, तो वहां पर आदि शिका लेना आप, मन बुद्धि चित अहंकार ये सब लेना अपनी तरफ से, एवं च देहेन्द्रियादि युक्तस्य शरीरद्वय युक्तस्य, देहेन्द्रियादि युक्त मतलब शरीरद्वय, शरीरद्वय कौन है आपका, सूक्ष्म और स्थूल दोनों से युक्त, जीवाभास भ्रमस्य, जो जीवाभास भ्रम है, दो शरीर लिया और साथ में चिदाभास लिया, चिदाभास ले, तीन ले लिया ना, चिदाभास का जो भ्रम है, चिदाभास रूप भ्रमस्य या अधिष्ठान चीतीर, जो अधिष्ठान चैतन्य है, यद अधिष्ठान चैतन्यमस्ति, जो अधिष्ठान चैतन्य है, तद अत्र वही वेदांतेषु, वेदांत में कुटस्थ शब्देन कुटस्थत्वेन विवक्षितम इत्यर्थ विवक्षित है। तो कुटस्थ मतलब कि लोहार के घर में एक होता है ना, क्या बोलते हैं इतना बड़ा, हाँ हिरण बोलते हैं, अब उस पर कुछ भी बनाओ बिल्कुल जस का तस रहता, तस से मस नहीं होता, ऐसे शरीर में कुटस्थ है वो बिल्कुल तस्मस नहीं होता, आप सुखी होते दुखी होते उसको कोई मतलब नहीं, सुख से नहीं दुख से नहीं, मान से नहीं अपमान से नहीं, ये सब हमारे मन के धर्म है, मान सम्मान अपमान निंदा तुति राग द्वेष सुख दुख, ये सब किसके धर्म है, मन के। तो मन के धर्म हो गए, उपनिषद में आता है ना काम क्रोध ह्री धी भी श्रद्धा श्रद्धा विचिकित्सा इत्येत सर्वम मन एव, सब मन है, श्रद्धा श्रद्धा ही मन का धर्म है, मन जरा अनुकूल है तो श्रद्धा, मन में विरोधी वृत्ति आ गई टेलीविजन की आज के चैनल की अश्रद्धा, ये सब मन का धर्म है। तो हम क्या करते, मन के धर्म को आत्मा में आरोप कर लेते, ये भूल हमारी है, जो मन का धर्म है ना, आत्मा में आरोप करके सुखी और दुखी होने लग जाते हैं, वही बता रहे। आगे देखिए, ब्रह्म शब्दस्य चार्थ माह, ब्रह्म शब्द के अर्थ को बदला रहे। ये दो श्लोक कंठ कर लेना, आपको काम आएगा। जो दो श्लोक है ना, 48-49, ये कंठ करना, नोट्स कर लेना, क्योंकि बार बार आएगा कुटस्थ और ब्रह्म क्या है। ये प्रमाणिक श्लोक है। जगत ब्रह्मस्य सर्वस्य यदा अधिष्ठानमीरितम् त्रियन्तेषु तदत्र स्याद् ब्रह्म शब्द विवक्षितम्। जगत ब्रह्मस्य सर्वस्य यदा अधिष्ठानमीरितम् त्रियन्तेषु तदत्र स्याद् ब्रह्म शब्द विवक्षितम्। जगत ब्रह्मस्य सर्वस्य, पूरे जो जगत का जो ब्रह्म है ना, जो आरोप, सर्वस्य सब कुछ, मतलब कि जड़ चेतनात्मक जो भी प्रपंच है, उन सब का जो अधिष्ठान है, उसी अधिष्ठान आश्रय चैतन्य को हम ब्रह्म कहते हैं। दोनों श्लोक कंठ करने योग्य हैं, क्योंकि बाद में भूल जाता है ना। जो जगत ब्रह्मस्य सर्वस्य, जगत ब्रह्म का जो अधिष्ठान है, त्रयंत बोलते हैं वेद, उसी को त्रयंत मतलब वेदांत, त्रय नाम वेद का है, समझे ना, त्रय बोलते वेद को, तो त्रय नाम वेद का उसमें लगा दो तो हो गया त्रयंत वेदांत। नहीं, त्रयी बोलते हैं वेद को, त्रयी मतलब वेद ना, ऐसा नहीं समझना। ये सब मैं पहले ही बोल चुका, आपको याद हो जाना चाहिए, पहले कई बार बोल चुका हूं। हाँ, त्रयी का अर्थ वेद तो है, पर त्रयी का अर्थ तीन नहीं। त्रयी शब्द का अर्थ है त्रय प्रतिपादकत्वात त्रयी शब्देर वेद उच्चते, ऐसा लेना। तीन चीज का प्रतिपादन करने से त्रय शब्द से वेद लेते हैं। तीन क्या? उपासना, ज्ञान और कर्म। त्रय का अर्थ तीन वेद नहीं लेना, तीन लेना मतलब ऋग जो साम ऐसा नहीं लेना, चारों वेद है। त्रय का चारों वेद अर्थ है, पर त्रय शब्द का अर्थ है त्रय प्रतिपादकत्व, तीन है ना, उपासना, ज्ञान, कर्म। क्योंकि चारों वेदों में तीन का प्रतिपादन है, या तो उपासना होगा, या कर्म होगा, या ज्ञान। तो तीन चीज का प्रतिपादक होने से वेद के लिए त्रयी शब्द का उपयोग होता है। ऐसा नहीं कि त्रयी शब्द ऐसा हो मैक्स मूलर, वेबर और मैकडॉनल उल्टा पुल्टा अर्थ कर देते हैं, ऐसा नहीं अर्थ करना। एक पुस्तक है, आप कहीं पढ़ना, उसका नाम है वेदार्थ पारिजात, बहुत मोटा है, इतने मोटे मोटे दो भाग में मेरे कमरे में रखे हैं, दोनों रखा हूं, जब भी आता हूं दोनों को निकाल के कमरे में रखता हूं अपने में, इतने मोटे मोटे दो है, नहीं टेबल पर रखा है। तो वेदार्थ पारिजात स्वामी करपात्री जी महाराज ने लिखा है, उसमें हिंदी भी अच्छी तरह, हिंदी भी पूरी है, कहां कहां लोगों ने उठपटांग अर्थ किया ना वेद का, उपनिषद का, वह पूरा कोड के साथ लिखे हैं, किसने कैसा गलत अर्थ किया, प्रमाण के साथ वहां लिखा। तो कई जगह जो है ना त्रय का अर्थ हो, क्या बोले, वेदार्थ पारिजात स्वामी करपात्री जी महाराज कृत है, वेदार्थ पारिजात बहुत मशहूर है, यहां के पुस्तकालय में है वेदार्थ पारिजात, उसमें हिंदी भी आधा है, जरा संस्कृत है, तो वहां पर लिखा है त्रय शब्द का किसने कैसा कैसा वो अर्थ कर लिया। तो त्रय का अर्थ तीन वेद नहीं है, त्रय मतलब तीन चीज का प्रतिपादक होने से वेद को त्रय सबसे कहते हैं, ज्ञान, उपासना और कर्म। हाँ, सब प्रौढ़ होता है, सब जल्दी पकड़ लेते, पर फिर भूल जाएगा अगले कल आऊंगा तो अभी नहीं बोलेंगे, पक्का हो गया। चलो अगली साल डॉक्टर साहब यही परीक्षा करना है। परीक्षा लेना हमको तो लगता भूल जाएंगे, हमको तो पूरा भरोसा है नहीं भूलेंगे ना। चलो बोलना अच्छा है, नहीं भूलेंगे ना तो स्वाध्याय कैसे चलेगा। और एक दिन पूरे ब्रह्मांड को ही भूलना, आपको जिसको भूलना चाहिए वो तो नहीं भूलते, दुनियादारी को भूलना चाहिए वो तो भूलता नहीं। चलो जी, तो त्रयांत मतलब वेदांत में ऐसा कहा गया, ब्रह्म शब्द विवक्षितम कृत्स्न जगत कल्पनाधिष्ठानम यच्चैतन्यम वेदांतेषु निरूपितम। कृत्स्न का अर्थ है संपूर्ण जगत के कल्पना का जो अधिष्ठान जो चैतन्य है वही वेदांत में ब्रह्म शब्द से निरूपित किया गया है। ब्रह्म शब्द न विवक्षितम इत्यर्थ, ब्रह्म शब्द से कहते हैं मतलब पूरे ब्रह्मांड का। जैसे मान लो लाखों करोड़ों जो घड़ा है उस सारे घड़े कहाँ रहते हैं, अपने स्थान में बंबई में है। एक बंबई शहर में करोड़ों घड़ा आ सकते ना, तो तत्त घटा व छिन्न चेतन अलग हो गया, और मुंबई जो सबका आश्रय है ना उस तरह से ब्रह्म शब्द का सबका आश्रय है, जड़ का भी चेतन का भी। ब्रह्म मतलब कि सभी विशेष कूट का जो आश्रय, न्याय में कर लोग बोलते हैं न्याय दर्शन में हम लोग कि नहीं निर्विशेषम सामान्यम तिष्ठति, नहीं निर्विशेषम सामान्यम तिष्ठति। सामान्य मतलब कि विशेष के समूह को सामान्य बोलते हैं, नहीं निर्विशेषम सामान्यम तिष्ठति, जो है सामान्य है ना, सामान्य बिना विशेष के नहीं रहता है, विशेष के समूह का नाम सामान्य है। नहीं इसे घटा लो, एक मुखी रुद्राक्ष है ना उसको विशेष कहते हैं, विशेष बोलते हैं ना आप एक मुखी, क्यों कि एक ही दो उपलब्ध होता है। अब एक मुखी रुद्राक्ष हजार हो जाए ना तो सामान्य हो जाएगा, क्योंकि एक मुखी दाना कम मिलता है तो विशेष हो गया, बहुत महत्वपूर्ण हो गया ना एक मुखी। कहीं उलट फेर हो जाए, एक मुखी लाखों में पाए जाने लग जाए और तीन मुखी बिल्कुल न हो तो तीन मुखी विशेष कहलाएगा। तो विशेष के कूट का नाम है सामान्य, कूट बोलते समूह, विशेष के समूह का नाम सामान्य है। ऐसी ब्रह्म है, ब्रह्म कैसा है, विशेष के समूह का नाम हो गया ब्रह्म। जो घटावचिन पटावचिन दंडावचिन जो है ना, इन सब के समूहों का जो एक सामान्य है उसी का नाम हो गया ब्रह्म। ऐसा अर्थ लेना, पक्का हो गया ना, कच्चा तो नहीं पूरा पक्का होना चाहिए। तो हम लोग जो व्यर्थ में ना अभिमान करते इस शरीर का परिचिंता का कि मैं हूं, विशेष तो आप हो गई, आप विशेष हो गई, आप विशेष हो गई ना सामान्य, उन सब का जो आश्रय उसका नाम हो गया ब्रह्मा, जो सामान्य चेतन हो गया। तो सामान्य चेतन हमेशा रहता है, देखो सामान्य चेतन की मौत नहीं होती है, बोलते ना फला आदि मर गया, तो मरने का मतलब विशेष चेतन का निर्गमन हो गया, सीधी बात है। सामान्य चेतन तो तब भी है जो पहले था, वो मरने के बाद भी है, मरते समय भी है सामान्य चेतन, परंतु पुर्यष्टक से एक विशिष्ट था ना वह चेतन चला गया तो बोलते मर गया, और विशिष्ट चेतन आ गया तो बोलते जीवित हो गया, ये तात्पर्य उसका है। आगे देखिए, ननु जीव ब्रह्माधिष्ठानम चैतन्यम कूटस्थ। देखो थोड़ा पढ़ेंगे ना जल्दी विद्वान हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा। काशी की कहावत है बहुत मशहूर, जब कोई पढ़ने आए ना काशी तो पूछते बताओ तुम जो जल्दी विद्वान बनना चाहते हो कि बहुत दिन के बाद, बोलता बहुत जल्दी विद्वान बनना चाहता हूं, बोलते बहुत पढ़ो खूब पढ़ो, तुम यदि बहुत पढ़ोगे तो बहुत दिन विद्वान होगे, और जल्दी बनना है तो थोड़ा पढ़ो, थोड़ा पढ़ेंगे मामूली सा तो बहुत जल्दी विद्वान बन जाएंगे, और बहुत पढ़ेंगे तो बहुत दिन लग जाते हैं। क्यों? कि आपकी बात है उपन्यास, उपन्यास कितनी बढ़िया लगता है, मतलब कि रात भर में 100 पन्ने पलट जाता आदमी का, पर ये भी कहानी याद नहीं होती। पर यदि दो कहानी पढ़े ना तो जीवन और भूलने वाले नहीं होता, कि नहीं ऐसा? दो कहानी पढ़े तो भूलेगे नहीं, पूरा उपन्यास पढ़ जाओ तो सब भूल जाता। समझ तो बताता उपन्यास, बड़ा मजा आया, कहानी अच्छी अच्छी कहानी है, परंतु सब भूल जाता। ऐसे यहां पर है, थोड़ा पढ़ेंगे तो मजबूत पक्का होगा, जल्दी विद्वान जल्दी ज्ञानी, ज्यादा पढ़ेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, पुस्तक में रह जाएगा तो बहुत दिन लग जाएगा, इसलिए कहते थे। चलो जी, ये पक्का हो गया आपको। कुटस्थ मतलब कि देहद्वय और चिदाभास का जो अधिष्ठान, उसका नाम कुटस्थ, और ब्रह्म मतलब पूरे प्रपंच का जो आश्रय, उसका नाम ब्रह्मा। अब आगे चलते हैं। ननु जीव ब्रह्माधिष्ठानम चैतन्यम कुटस्थ इत्युक्तम अनुपन्नम जीवस्यारोपितत्व असिद्धे इति आशंक्य तस् आरोपितत्वम कैमोतिक न्यायेन साधयति। जीव ब्रह्म अधिष्ठानम चैतन्यम, जीव ब्रह्म का जो अधिष्ठान चैतन्य है, चिदाभास के भ्रांति का, चिदाभास के भ्रांति का जो अधिष्ठान है, उसको आपने कहा कि कुटस्थ है, ऐसा कथन करना गलत है, अनुपन्न है मतलब असिद्ध है। उपन्न बोलते सिद्ध को, अनुपन्न बोलते असिद्ध है, बात ठीक नहीं है, तो नहीं ठीक है। जीवस्य आरोपितत्व सिद्धे, जीव को कोई आरोपित मानता नहीं, आरोपित बोलते हैं भ्रांत, जीव को कोई भी भ्रम नहीं मानता है, जीव तो सच्चा है। जीवस्य आरोपितत्व असिद्धे, जीव को आरोपित हम नहीं मानते, सिद्ध है, ऐसा कोई आशंका किया तो उत्तर देते हैं, तस्य मतलब जीवस्य आरोपितत्व कैमोतिक न्यायेन, तस्य मतलब जीवस्य, जीव के आरोप का कैमोतिक न्याय से यहां पर बदला रहे हैं। कैमोतिक न्याय बोलते हैं जिसका नौकर सेवक इतना बढ़िया है, ज्ञानी अच्छा है, उसके स्वामी के विषय में क्या कहना, बोलते ना कैमोदिक न्याय, उसके विषय में क्या कहना, ऐसा होता है। सेवक बढ़िया है तो समझना ठीक है स्वामी, तो सेवक गड़बड़ झाला है तो समझना चाहिए, तो आजकल उल्टा होता है, आजकल पुराने जमाने की बात है, आजकल नहीं कहते। कोई भी जो नियम होता है ना, सार्वत्रिक नहीं होते, एक देश में होता है। अब देखो भक्त प्रहलाद जी कितने अच्छे महान, किसी के लिए भगवान को आना पड़ा, उनके पिताजी कैसे, तो वहां कैमोतिक न्याय नहीं लग पाएगा कि इतना अच्छा बेटा तो बाप बहुत अच्छा होगा, नहीं घटेगा, बाप तो इतना खतरनाक, जो भगवान के कट्टर द्वेषी, पर पुत्र भगवत भक्त। तो कोई भी नियम कानून कायदा सार्वत्रिक नहीं होते, एक देश में लागू होता है, वही यह बता रहे। ए तस्मिन्नेव चैतन्ये जगत आरोप्यते यदा तदा तदेक देशस्य जीवाभासस्य का कथा। एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा। एतस्मिन्नेव चैतन्ये, इसी चैतन्य में, अधिष्ठान चैतन्य में जगत आरोपित, पूरा ब्रह्मांड कल्पित है, आरोपित है, तदा तो फिर तदेक देशस्य उसी तद कार्य जगत, तद मतलब जगत, जगत का एक देश है कौन, जीव। तो जीव के विषय में क्या कथन करना, कि जीवाभासस्य का कथा, इसके विषय में क्या कथन करना। भाई जगत में पूरा ब्रह्मांड आ गया, समझे ना, तो पूरा जगत ही जब ब्रह्म में कल्पित है तो जगत के गर्भ में पेट में बैठा हुआ जीवाभास के विषय में क्या कहना, वह भी कल्पित है। चित्त सुखी का श्लोक बिल्कुल ऐसा ही है, अक्षमा भवत केयम ब्रह्मणि साधकत्व प्रकल्पने किम पश्चि तत्रैव ब्रह्मणि अज्ञान जगत कल्पितम। सिद्धांती डांटता पूर्व पक्षी को कि तुम कहते हो कि कौन साधक होगा, कौन बाधक होगा, कौन मुक्त होगा, कौन बंद होगा, किसमें बंद होगा, जब पूरा ब्रह्मांड ही अज्ञान से ब्रह्म में कल्पित है तो फिर जगत इस जीव की कल्पना के विषय में क्या कहना। अक्षमा भवत कियम ब्रह्मणि साधकत्व कल्पने, असहिष्णु क्यों हो रहे ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना करने पर, पूरा ब्रह्मांड ही संसार ही ब्रह्म में अज्ञान से कल्पित है, सब अज्ञान से कल्पित है तो चिदाभास भी कल्पित हो जाएगा। जैसे घटावच्छिन्न चेतन, घट होने के बाद घटावच्छिन्न चेतन हो गया, पट होने के बाद पटावच्छिन्न चेतन, चेतन तो शुद्ध है, बिल्कुल अद्वितीय अखंड है। देखो चेतन में कोई खंड नहीं है, भाग नहीं, टुकड़ा नहीं है। जैसे आकाश है, आकाश में कोई टुकड़ापना नहीं, खंडपना नहीं, फिर भी बोलते हैं मठाकाश, घटाकाश, डंडाकाश बोलते, उस उपाधि से उसका नाम रूप बदल गया। अब डंडाकाश लंबा है, घटाकाश गोल मटोल है, और मठाकाश जरा बहुत बड़ा है। ऐसे यहां पर भी घटावच्छिन्न, पटावच्छिन्न, डंडावच्छिन्न, अंतःकरणावच्छिन्न चेतन सब अलग अलग, तो अलगाव की प्रतिकृति ही भ्रांति है, और ये प्रतिकृति अज्ञान से निर्मित है, वास्तविक नहीं है। जो भी कुछ है ना ये सब अज्ञान से कल्पित है। तो चिदाभास भी, ये जीवाभास भी अज्ञान से कल्पित है। ज्ञान होने के बाद केवल एक आकाश ही आकाश है, चाहे घट के भीतर भी वही आकाश, घट के बाहर भी वही आकाश है, कुल नाम रूप अलग अलग है। ऐसे ही एक विवाद्वितीय चेतन ब्रह्म ही सब कुछ है, ये नाम रूप की कल्पना ही भ्रांति है। ये बात बैठ जाए ना तो आप कभी परम आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। देखो गड़बड़ी जानते कहां, गड़बड़ी कहां है, गड़बड़ी ये है कि हम लोग नाम रूप को पकड़ के रखना चाहते, बिल्कुल पकड़ के कस के। जब रात को सोते हैं तो सीमित अहंकार को विसर्जित करना पड़ता है, जब तक अहिमान नाता किया मैं हूं तब तक ठीक से नींद नहीं आती। तो आपको सुषुप्त आनंद पाने के लिए इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, करनी पड़ती कि नहीं। भाई सारी व्यवस्था किस लिए, इतना पैसा क्यों कमा रहे, कहते मजे से सोएंगे, लोग बोलते ना खूब पैसा कमाएंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, एसी लगाएंगे और फिर मजे से सोएंगे, मतलब क्या सुषुप्त आनंद आपको हजारों लाखों जन्मों से अनुभूत है कि सुषुप्त आनंद में बड़ा आनंद आता है, पर वहां क्या लेकर जाते, कुछ लेकर जाते कुछ भी नहीं, सब छोड़ना पड़ता है। शरीर इंद्रियां भी आप छोड़ देते हैं बिस्तर पर, सब कुछ जब विसर्जित कर देते, त्याग देते हैं, इसलिए कहा ना त्यागे नहीं अमृतत्व मानसु, जब सब त्याग देते तब जाकर परम आनंद की अनुभव होता। ऐसे यहां पर भी सब त्यागना चाहिए, मन से त्यागना है, बाहर से नहीं। त्याग का ईमान भी ना प्रतिबंधक बन जाता, कई बार क्या होता त्याग का ईमान में बड़ा भारी त्याग, तो मन से सब जब छोड़ देगा, सब परमात्मा का है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, सेवक हूं, इस त्याग से परम शांति की अनुभूति होने लग जाती। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।